वो डेस्परेटली अब गौरी को ढूंढकर उसकी भी जान लेना चाहता था, ताकि लोकेट अपनी बीवी के मृत शरीर पर चढ़ा सके। जी हाँ, क्योंकि राजवीर एक डॉक्टर था, जिसकी वजह से वो अपनी बीवी से बेहद प्यार करता था, और जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी को मुखाग्नि नहीं दी थी, और उसने कुछ केमिकल्स साथ साथ बर्फ की सहायता से आज तक अपनी बीवी की लाश, मृत लाश को अपने पास रखा था, और उसके मृत शरीर को उसने जो लोकेट उन परिवारों की जान लेने के बाद लिए थे, वो लोकेट उसकी लाश को चढ़ा दिए थे। लेकिन अभी भी एक लोकेट बाकी था। राजवीर ने कसम खाई थी कि जब तक वो पूरे लोकेट अपनी पत्नी के गले में नहीं पहना देता, तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। बदला लिए बिना वो सुकून से नहीं रहेगा। फ्लैशबैक एंड। आस्था को अपने दादाजी, अपने भाई और माँ बाप की मौत के बारे में पता चल चुका था, और कुणाल और संगीता ने किस तरह से आस्था को बचाया था, किस तरह से एक आदमी ने वहाँ पर आक्रमण किया था, ये सारी बातें डायरी में लिखी थीं। लेकिन असल में मामला उस लोकेट के पीछे का था, ये बात आस्था को भी नहीं पता थी, क्योंकि आस्था को नहीं पता था कि उसमें वो डॉक्टर कौन था। केवल डॉक्टर का जिक्र था, लेकिन डॉक्टर का नाम नहीं था। इतना ही नहीं, संगीता और कुणाल ने अपनी डायरी में अधिराज रघुवंशी की जगह मालिक, मालकिन, उनके बेटे बहु इस तरह से लिखा हुआ था। ये बिल्कुल भी नहीं लिखा था कि उनका क्या नाम था। तो आस्था के लिए पास्ट जानकर भी अधूरा था, क्योंकि सब कुछ काफी अधूरा सा नजर आ रहा था। साथ ही साथ आस्था का सरदर्द और बढ़ चुका था, क्योंकि सब कुछ जानकर भी उसके लिए ये सच अधूरा था। अब तो उसके हाथों का रोंगटा खड़ा हो गया था ये सोचकर कि उसके माँ बाप की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, जिन माँ बाप ने उसे पाला पोसा, उनकी भी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। आस्था के सर पर एकदम से ही बोझ सा बढ़ गया था। आज आस्था को ऐसा लग रहा था मानो एकदम से उसकी पहचान, उसका वजूद बदल गया है। अब आस्था ये आधी अधूरी बात जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी, और इससे पहले कि उसकी आंखों से आंसू बहते, जल्दी उसने वो डायरी वापस से थैले में रख दी थी, क्योंकि उसे वो डायरी पढ़ते पढ़ते डेढ़ घंटे से ज्यादा हो चुका था। तो थोड़ी अपनी पीठ को आराम देने के लिए वो नानी माँ के बेड पर ही लेट गई थी। डायरी पढ़कर आस्था को सिर्फ कुणाल और संगीता के बारे में पता चला था, लेकिन ज्यादा खास वो कुछ जान नहीं पाई थी। और उसे लेटे हुए मुश्किल से अभी 2 से 3 मिनट हुए थे, तभी अरमान सिंघानिया दनदनाता हुआ उसके पास आ धमका, और आस्था को इस तरह से ही लेटे हुए देखकर और साथ ही साथ उसकी आंखों में आए आंसुओं को देखकर उसकी भौहें तन गई थीं। और वो आस्था को घूरते हुए देखकर बोला, ये सब क्या है मिस आफत, आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्या आपको पता नहीं है कि गेस्ट रूम में CCTV नहीं है, और मैं आपको देख नहीं पा रहा था? आप जानती हैं मेरी क्या हालत हो गई थी, मुझे बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि ना जाने आपको क्या हो गया है। हाँ, जवाब दीजिए मुझे मिस आफत, आखिरकार आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? आपके कहने पर ही तो मैं ऑफिस में गया था ना, तो फिर आपको मेरी आंखों के सामने रहना चाहिए था। अब आस्था, जो कि पहले से ही परेशान थी, उसके दिमाग में इस वक्त अपने परिवार के बारे में जानने की चिंता थी। अब इस तरह से अरमान की बातें सुनकर उसका दिमाग और भी ज्यादा खराब हो गया था, और वो अरमान की ओर देखकर गुस्से से बोली, आपने क्या लगा रखा है हाँ? क्यों आप हमें इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? अरे, हम जानते हैं कि आपको हमारी फिक्र हो रही है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप सांस तक लेना भारी कर दें। मैं अकेली रहना चाहती हूँ, और आप चाहते हैं कि अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो भी आप मुझे देखते रहें? हाँ, तो फिर आपको ऑफिस जाने का फायदा क्या, बताइए मुझे आपका ऑफिस जाने का फायदा? क्या मैं जानबूझकर हॉल में नहीं बैठी, जानबूझकर मैं अपने कमरे में नहीं लेटी, क्योंकि मुझे पता था कि ऑफिस जाने के बाद भी आप मुझे ही देखते रहेंगे कि मैं कब उठ रही हूँ, कब बैठ रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या पी रही हूँ, किससे बातें कर रही हूँ? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आई डोंट लाइक दैट मिस्टर सिंघानिया, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आस्था का इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन देखकर, आस्था को इस तरह से तेज आवाज में अरमान से बातें करते हुए सुनकर सभी लोगों का मुंह हैरानी से खुला रह गया था। क्योंकि जब अरमान सीधा मेंशन में आया, उसने सबसे पहले जाकर हॉल में ही पूछना शुरू कर दिया था, आस्था कहाँ है, बताइए कहाँ है आस्था, आस्था, आस्था। सब आस्था का नाम लेते हुए हैरान हो गए थे कि अचानक से अरमान ऑफिस से कैसे जल्दी आ गया, और आते ही इस तरह से आस्था के बारे में क्यों पूछ रहा है। कोई अनहोनी ना हो, इसीलिए सब अरमान के पीछे पीछे आ गए थे। तब नानी माँ ने अरमान को बता भी दिया था कि आस्था उसके कमरे में है, तो इसीलिए अब सब नानी माँ के कमरे के बाहर जमा हो गए थे। वहीं आस्था की अब इस तरह की बातें सुनकर सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था, और साथ साथ आहान तो ध्रुव के सामने रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, ये क्या हो गया, पहले तो मेरे भैया शेर हुआ करता था और मेरी भाभी बकरी हुआ करती थी, लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया है, अब मेरी भाभी शेरनी हुआ करती है और मेरा भाई बकरा बन गया। ऐसा बोलकर आहान बुरी तरह से रोने की एक्टिंग करने लगा था। आहान को इस तरह से एक्टिंग करता हुआ देखकर सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं अरमान तो आस्था की बात सुनने के बाद एकदम से चुप हो गया था, वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, क्योंकि नानी माँ ने अरमान को पहले ही समझा दिया था, बेटा दामाद जी आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस वक्त आस्था अपनी प्रेगनेंसी के पहले महीने में है और प्रेगनेंसी की हालत में जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके मूड स्विंग होते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है। लेकिन आपको इस मामले में अच्छे से सारी चीज़ों को हैंडल करना होगा, ये कहते हुए नानी मारमान को काफी सारी बातों के बारे में समझाया था। वहीं अरमान अपने आप को कूल डाउन करते हुए प्यार से आस्था के कंधों को पकड़कर बोला, देखो मैं जानता हूँ कि शायद मेरा ज्यादा केयर करना आपको परेशान कर रहा है, लेकिन मैं आपको परेशान नहीं देख सकता हूँ। आप नहीं जानती, जब मैंने आपको पिछले 2 घंटे से नहीं देखा तो मुझ पर क्या बीती है। मुझे लगा कि कहीं आपके साथ कुछ प्रॉब्लम ना हो गई हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 24 घंटे कैमरा के सामने रहें, लेकिन थोड़ी बहुत देर, आधे घंटे या 1 घंटे के बीच में तो आप अपना चेहरा मुझे दिखा सकती है ना। अब जैसे ही अरमान अपने बड़े ही क्यूट से तरीके से ये बोलना शुरू किया, अब तो आस्था की आंखें बाहर निकलने को तैयार थीं। एक तो उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि उसने अरमान जी पर चिल्ला दिया था और अरमान चुपचाप उसकी बात सुन भी रहा था, लेकिन अब अरमान की ये बातें तो उसे और हैरान कर गई थी। और अरमान की बातें न केवल आस्था बल्कि बाहर खड़े हुए सभी लोगों ने सुन ली थी, क्योंकि नानी माँ का कमरा साउंड प्रूफ नहीं था। अब तो सबने अपने मुंह पर हाथ रख लिए थे, वहीं दादाजी भी मुस्कुराने लगे थे। तब ध्रुव आहान को कोहनी मारते हुए कहा, अब अपनी ये छिछोरी हरकतें बंद कर, अगर भाई ने देख लिया तो छोड़ेगा नहीं। तब जल्दी से आहान सीधा होकर खड़ा हो गया था।
जल्दी ही अरमान के इस तरह से प्यार से बोलने पर आस्था को अरमान पर बहुत सारा प्यार आया और आस्था ने उसे तुरंत गले से लगा लिया और मन मन में बोली, हमें माफ कर दीजिए अरमान जी, हमें अपना गुस्सा इस तरह से आप पर नहीं निकालना चाहिए था। लेकिन आस्था अपने पास्ट के बारे में आधा अधूरा सच जानकर काफी ज्यादा इरिटेट हो गई थी, क्योंकि उसे डॉक्टर के बारे में तो उसने अपने खूनी को देखा था, लेकिन किसी आदमी ने उसके परिवार की जान ली थी और किसी आदमी ने उसके जन्म देने वाले और साथ ही साथ पालने वाले माता पिता की जान ली थी। तो आस्था अब डेस्परेटली उस आदमी से मिलना चाहती थी। इनफैक्ट उसका इरादा अब तो बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका था कि वो हर हाल में अपने गुनहगार को सजा दिलाएगी। अब अंदर से किसी तरह की कोई आवाज ना आते हुए देखकर वो सभी अंदर जाकर देखने लगे कि कहीं सब ठीक है या नहीं है। लेकिन जैसे ही वे वहां आते हैं और उन्होंने आस्था और अरमान को एक साथ इस तरह से गले लगे हुए देखा तो सबके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई थी। वहीं नानी माँ अपना गला ठीक करने लगी थी ताकि अरमान और आस्था एक दूसरे से अलग हटकर खड़े हो जाएं, क्योंकि इस वक्त सभी उन्हें देख रहे थे। अब जैसे ही नानी माँ की आवाज अरमान के कानों में पड़ी, वो घूर कर नानी माँ की ओर देखने लगा था, लेकिन बाकी सबको देखने के बाद अरमान थोड़ा सा पीछे होकर खड़ा हो गया था और बिना कुछ कहे जल्दी ही वो कमरे से बाहर भी निकल गया था। वो समझ चुका था कि अगर अरमान ज्यादा देर यहाँ रुका तो सब लोग उसे छेड़ना शुरू कर देंगे, इसीलिए अरमान जल्दी ही वहां से बाहर निकल चुका था। वहीं आकाश और सुमित इधर उधर देखकर बोले, हम भी चलते हैं, हमें भी लेट हो रहा है। तब राधिका ने सुमित को एक सपाट सा लुक दिया था। कहीं ना कहीं राधिका की आंखों में अब सुमित को अजनबीपन महसूस होता था, जो कि सुमित टॉलरेट नहीं कर पा रहा था। वो तो शुरू से यही चाहता था कि राधिका उससे नफरत करे, लेकिन जिस तरह से राधिका प्यार किया करती थी, उसके पीछे पड़ा करती थी, उसे उस तरह से उसके बदले में राधिका का इतना फीका रूखा व्यवहार उसे बहुत ज्यादा अंदर से परेशान करता था। लेकिन उसका पावरफुल ऑरा, उसकी पर्सनालिटी उसे इस बात की इजाजत नहीं देती थी कि वो राधिका को कुछ भी कह सके। अरमान के वहां से जाने के बाद सब लोग उसके पीछे पीछे चले गए थे। तभी राधिका, रौनक, रश्मि आस्था के साथ रुक गई थी। वो आंखें मटकाकर आस्था को थोड़ा सा छेड़ते हुए बोली, क्या बात है आस्था, जो इंसान सभी लोगों पर हुकूमत करता है उसको तुमने अच्छी तरह से मेंटेन किया हुआ है। आखिरकार आज ये बात साबित हो ही गई, पति चाहे कितना ही बड़ा शेर क्यों ना हो, लेकिन आखिर में है तो वो एक पति ही ना। अब जैसे ही रश्मि ने कुछ थोड़ा सा फनी सा मुंह बनाते हुए ये बोला, आस्था मुस्कुराने लगी और फिर वो खाली खाली नजरों से नानी माँ की ओर देख रही थी। नानी माँ बस चुपचाप आस्था को ही देख रही थी। तभी सबके जाने के बाद नानी माँ के पास आते हुए बोली, मेरे बच्चे, जानती हूँ कि तुम ये सब कुछ जानने के बाद तुम्हें सब कुछ अजनबी सा और पराया सा लग रहा होगा, लेकिन तुम्हारे परिवार का नाम और निशान अब इस दुनिया से मिट चुका है। तुम्हारे नाना एक जान देने वाले बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर थे। मैंने उनकी मदद से रघुवंशी परिवार के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन कोई भी उनके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पाया। रातों रात रघुवंशी परिवार का नाम और निशान मिट गया था। वहां से तुम्हारे माँ बाप की लाश तो बरामद हुई थी, लेकिन तुम्हारे दादाजी और साथ ही साथ तुम्हारे भाई के बारे में कुछ भी पता नहीं चला था। आस्था, नानी माँ की बात सुनकर आस्था के चेहरे पर एक चमक आ गई थी। उसे ऐसा लगने लगा था कि अगर उसके भाई और दादाजी के साथ कुछ नहीं हुआ होगा तो हो सकता है कि वे लोग जिंदा हों। हाँ, ये भी तो हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी और तब आस्था को एक एहसास हुआ था कि मानो कि उसका भाई और दादाजी जरूर जिंदा है। तब आस्था ने नानी माँ को गले से लगाया और दिलासा देते हुए बोली, हम अभी थोड़ी देर मिलते हैं नानी माँ। ऐसा बोलकर आस्था अब अरमान के पास जाने लगी, क्योंकि उसने अरमान को सबके सामने भला बुरा कह दिया था, तो इसीलिए आस्था को अब रिग्रेट फील हो रहा था। तो थोड़ा सा वो उसे प्यार करना चाहती थी या उससे बातें करके जो भी उसने उन्हें बोला था उसके बारे में अपनी सफाई देना चाहती थी। अब जैसे ही आस्था अरमान के पास पहुंची, अरमान मुंह फुलाकर बालकनी में खड़ा हुआ था, क्योंकि आस्था ने सबके सामने अरमान को डांटा था और सबके सामने अरमान को ओवर पजेसिव होने का ताना दिया था। इसीलिए अरमान आस्था से नाराज होकर मुंह फुलाकर खड़ा हुआ था। हालांकि अरमान पर यह सारी चीज सूट नहीं कर रही थी, लेकिन बेचारा आखिरकार एक पति और प्यार करने वाला पति बन गया था, और नॉर्मल प्यार करने वाला नहीं, बहुत ज्यादा ओवर प्यार करने वाला पति था। तो उसके लिए अपने बीवी का इस तरह से डांट सुनना काफी हद तक नाकाबिले बर्दाश्त था। वेल, जल्दी ही आस्था ने अरमान को देखा। वो अरमान की बेस्ट काली कॉफी यानी कि ब्लैक कॉफी लेकर वहां आई और टेबल पर रख दी। अरमान को पता चल चुका था कि आस्था इस वक्त कमरे में है, लेकिन उसने मुड़कर आस्था की ओर नहीं देखा। फिर आस्था अपने छोटे छोटे से कदम बढ़ाते हुए सीधा अरमान के पास गई। पीछे से उसने अरमान को जोरों से गले से लगा लिया और उसकी पीठ को गले से लगाकर सॉफ्ट वॉइस में बोली, आई एम सॉरी हबी, प्लीज माफ कर दीजिए ना।